जी, आप यहाँ इत्मीनान से बैठी हैं और बेचारी माँ का गला बैठ गया आपको आवाजें देते देते, पर आप सुनने को ही तैयार नहीं। अंत में उन्होंने मुझे भेजा कि जरा देखकर तो आऊं कि आप ऐसा क्या कर रही हैं कि एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। बेधड़क कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसती अंतरा ने आहाना को बेड पर बैठे देखकर जो बोलना शुरू किया सो नॉन स्टॉप रिकॉर्डर जैसे बजती ही चली गई। आहाना ने अभी जस्ट फोन काटा ही था कि अंतरा उसके सामने आ धमकी, जिससे वो हड़बड़ा गई। वो हमें सुनाई नहीं दिया, आहाना ने जल्दी से बहाना बनाते हुए सफाई पेश की। और सच भी यही था, उसे तो अक्षय के अलावा किसी की आवाज़ आई ही नहीं थी। अंतरा ही उसके सामने आकर ठहरी थी, उसकी लड़खड़ाती जुबान ने उसके मन में शक को जन्म दिया। उसका दिमाग चीते जैसा तेज दौड़ता था और यहाँ भी उसका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका था। जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे देखकर घबरा गई हैं? अंतरा तेज निगाहों से उसे घूरने लगी थी। उसका सवाल सुनकर और घूरती नज़रों से बेचारी आहाना नर्वस हो गई और हड़बड़ी में इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम भला तुमसे क्यों घबराएंगे? हाँ, ये बात भी सही है, अंतरा ने सर हिलाया, फिर भौं झुकाते हुए बोली, आप कर क्या रही थी यहाँ अकेले बैठकर? आहाना अभी इस सवाल का जवाब भी नहीं ढूंढ सकी थी कि अंतरा की तेज निगाहें उसके हाथ में मौजूद फोन पर पड़ गईं और उसने लगे हाथ अगला सवाल भी उस पर दाग दिया। फोन पर बात कर रही थी क्या? ऐसे भी किस खास शख्स से बात कर रही थी जो आपको माँ की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी? अंतरा के इन सवालों से आहाना घबरा गई। हालत ऐसी थी कि ना निगलते बन रहा था और ना ही उगलते। सच बोल नहीं सकती थी और झूठ बोल नहीं पा रही थी। चेहरे का रंग उड़ा था और आंखों की पुतलियां फैली हुई थी। जी, हमें आपके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ ली है, इसलिए आप सटपटाई और घबराई हुई हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम तो अपनी कलीग से बात कर रहे थे, वो तो तुम अचानक अंदर आ गए इसलिए घबरा गए, और तो कोई बात नहीं। शुरू में आहाना आहड़बड़ाई पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और बहाना भी ऐसा बनाया कि अंतरा को ना चाहते हुए भी उस पर विश्वास करना ही पड़ा, पर शक का कीड़ा दिमाग में घुस चुका था। फिलहाल के लिए उसने सर झटका और जयंती जी का फरमान सुना दिया। खैर छोड़िए ये सब बातें, हम आपको बताने आए थे कि मम्मी आपको नीचे बुला रही हैं, जल्दी से आ जाइए, पापा गर्मा गर्म रबड़ी जलेबी लाए हैं, हम तो खाने जा रहे हैं। तुम जाओ, हम आते हैं कुछ देर में, अंतरा ने उसे जल्दी आने को कहा और फुदकती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आहाना ने गहरी सांस अपने भय से किकुड़ते फेफड़ों में भरी और फोन को देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, हमने ऐसे अचानक उनके मुंह पर ही फोन काट दिया, उन्हें तो कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? मैसेज करके माफी मांग लें क्या? नहीं, फिर तो और ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, रहने देते हैं, अगर कभी उन्होंने बात छेड़ी तो माफी मांग लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। खुद ही कुछ बातें करने के बाद आहाना एक फैसले पर पहुंची। फिर उसने अक्षय का नंबर सेव किया और यहाँ भी दो चार बार नाम लिखकर मिटाने के बाद जाकर उसने नंबर सेव किया, उस पर प्रतीक के नंबर्स भेजे, फिर फोन वहीं रखकर नीचे चली आई जहाँ सब उसी के इंतजार में बैठे थे। अनजाने ही आहाना के मन में ख्याल आया कि शादी के बाद वो जिस घर जाने वाली है, क्या वहाँ भी उसे यही लाड प्यार और मान सम्मान मिलेगा? क्या वहाँ किसी को खबर रहेगी कि उसने कुछ खाया है या नहीं? क्या वहाँ कोई होगा उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखे? क्या वहाँ उसकी गलतियों को यूं ही प्यार से सुधारा जाएगा? जवाब था नहीं, क्योंकि वहाँ उसकी माँ नहीं होगी। ये जवाब उसे उदास कर गया, मन भर आया और बेइरादा ही वो जाकर जयंती जी से लिपट गई, जिससे वो एकदम से चौंक गई। फिर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस कुछ देर आपके पास रहने का मन है, आहाना ने उनसे लिपटे हुए ही जवाब दिया। जयंती जी कुछ परेशान सी हो गई, फिर उसे अपने आंचल की छांव में छुपाए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। आहाना और अक्षय की बात हुए कुछ दिन बीत गए थे। अक्षय की तरफ से ना कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल, जबकि आहाना उसके इंतजार में थी और ये सोच सोच कर परेशान थी कि अक्षय ने प्रतीक के साथ क्या किया होगा। पल्लवी और दृशांत अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। दृशांत अपने ऑफिस जाने लगा था जबकि पल्लवी अपने मायके गई हुई थी और वहीं से स्कूल जा रही थी। आहाना स्कूल में ही थी, लंच ब्रेक शुरू हुआ था और वो स्टाफ रूम की ओर बढ़ रही थी जब उसके फोन की रिंग ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। स्क्रीन पर अक्षय जी नाम चमकते देखकर आहाना की धड़कनें पल में बढ़ गईं और रुख पर गुलाबी रंगत बिखर गई। उसने आसपास नजरें दौड़ाई, बच्चों का हुजूम क्लासरूम से बाहर निकल रहा था, स्टाफ मेंबर्स टीचर्स स्टाफ रूम की ओर बढ़ रहे थे और इस चहल पहल के साथ वहां शोर भी खूब था। बात करने के लिए आहाना को जगह मुनासिब ना लगी सो उसने लम्हे भर सोचने के बाद एक मैसेज ड्रॉप कर दिया और वहां से निकलकर तेजी से स्टाफ रूम की ओर बढ़ गई। अक्षय जो लंच ब्रेक में फ्री होकर अपने चेंबर में लौटते हुए आहाना को फोन कर रहा था, मैसेज की टोन सुनकर उसने फोन कान पर से हटाकर देखा। स्क्रीन पर ही आहाना का मैसेज चमक रहा था, 5 मिनट बाद कॉल कीजिएगा। बस छोटा सा मैसेज था
जिसे पढ़कर अक्षय मुस्कुराया और फोन जेब के हवाले करते हुए आगे बढ़ गया। आहाना ने स्टाफ रूम में अपने डेस्क के सामने लगी चेयर पर सामान रखा और फोन लेकर बैक साइड आई ही थी कि एक बार फिर उसका फोन बजने लगा। आहाना ने तुरंत ही कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, उसकी मीठी सी आवाज अक्षय के कानों में मिश्री सी घुलकर उसके सीने में मौजूद दिल को मीठे मीठे एहसासों से भर गई। हेलो, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं, लंच ब्रेक शुरू हुआ है। जब आपने फोन किया तो क्लास से निकले ही थे, वहां बहुत शोर था इसलिए कॉल रिसीव नहीं की। आहाना ने अक्षय के कुछ पूछने से पहले ही लगे हाथ सफाई भी दे डाली। ये देखकर अक्षय मुस्कुरा दिया। इट्स ओके, अब फ्री हैं आप? जी। क्यों, लंच ब्रेक में लंच नहीं करना आपको? करना है, पर थोड़ी देर बात कर लेंगे, आहाना ने जरा सकुचाते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर अक्षय की मुस्कान गहरी हो गई। वैसे आप पहले लंच करने के बाद में फुर्सत में भी मुझसे बात कर सकती हैं। अक्षय का सुझाव सुनकर आहाना ने तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया। नहीं, तब तो पल्लवी और बाकी कलीग्स भी साथ होंगे, उनके बीच से उठकर आना अच्छा नहीं लगेगा। उफ, उसकी शर्मीली मंगेतर तो उससे बात तक करने में शर्माती है। ये देखकर अक्षय की मुस्कान गहरी हो गई। पल भर की खामोशी के बाद आहाना ने ही बात आगे बढ़ाई। आपने लंच कर लिया? नहीं, अभी तो फ्री हुआ हूँ, करूंगा थोड़ी देर में। ऐसे मौका नहीं मिलता तो सोचा कि पहले कुछ देर आपसे बात ही कर ली जाए। अच्छा, आहाना ने सर हिला दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि आगे क्या कहे, तो चुप्पी साध गई। कुछ सेकंड बाद अक्षय ने उनके बीच की खामोशी को तोड़ते हुए उससे सवाल किया। आहाना, आपको शिकायत नहीं होती कि मेरे पास आपसे बात करने के लिए वक्त नहीं होता, जबकि अभी यही एक जरिया है हमारे पास एक दूसरे को जानने और समझने का? हम समझते हैं आपका काम ही ऐसा है, इसलिए हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। शादी के बाद भी आप इतनी ही अंडरस्टैंडिंग रहेंगी, तब भी शिकायत नहीं कहेंगी कि आपका पति आपके हिस्से का वक्त भी अपने काम को देता है और आपके लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता? अक्षय के इस सवाल को सुनकर आहाना ने पल भर सोचने के बाद जवाब दिया।
हमारे पापा कहते हैं कि इंसान को अपने काम के साथ अपने परिवार को भी वक्त देना चाहिए, दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना चाहिए। आम शब्दों में कहें तो हम मानते हैं कि आपका काम ही ऐसा है जिसमें वक्त का कोई होश नहीं रहता। कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, पर हमेशा ही 24 घंटे तो व्यस्त नहीं रहते होंगे, तो अपने फ़र्ज़ और परिवार के बीच तालमेल कैसे बिठाना है ये तो आपको देखना चाहिए। अब आपके सवाल का जवाब दें कि हम क्या करेंगे, तो कुछ कुछ मजबूरियां ज़रूर समझेंगे हम, पर अगर आप हमारे हिस्से का सारा वक्त अपने काम को ही देंगे और हमें पूरी तरह से नज़रअंदाज करेंगे तो हम ये तो खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाराज़ होंगे आपसे, शिकायत भी करेंगे, नाजायज़ ज़िद नहीं करेंगे, पर हर बार मुस्कुराकर अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब शादी के बाद मेरे लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ने वाली हैं? यही मान लीजिए आप, पर सिर्फ आपके लिए ही तो नहीं बढ़ेंगी, हमारे लिए भी बहुत कुछ बदलेगा और उस बदलाव के अनुसार खुद को ढालने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत होगी। बात तो सही कही आपने, अब आप मेरे लिए अपना घर परिवार और यहाँ तक कि शहर भी छोड़कर इस नई जगह, नए माहौल में नए अनजान लोगों के बीच आएंगी, तो आपको खुश रखना, इस माहौल में ढलने में आपकी मदद करना, ये ख्याल रखना कि आपको अकेलापन महसूस ना हो, मेरी ही जिम्मेदारी होगी, जिसके लिए मुझे अभी से खुद को तैयार करना होगा। आहाना ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, उसका ध्यान पल भर को भटक गया था। फिर अचानक ही उसके जहन में प्रतीक का ख्याल आया और उसने तुरंत ही सवाल पूछ लिया। अक्षय जी, आपने क्या किया उनके साथ? अचानक टॉपिक के बाहर से आया ये सवाल सुनकर अक्षय चौंक गया। किसके साथ क्या किया मैंने? प्रतीक जी के साथ, आपने हमसे उनका नंबर लिया था ना? आहाना ने उसे उस दिन की बातें याद दिलाईं। अक्षय, जिसके दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकल चुकी थी, उसे सब वापस ध्यान आया और इसके साथ ही चेहरे के भाव कुछ बिगड़ गए। कुछ नहीं किया, अक्षय के बात टालने पर आहाना ने तुनकते हुए कहा। बहलाइए नहीं, बताइए क्या किया आपने उनके साथ? सच में कुछ भी नहीं किया, आप बताइए, अब परेशान तो नहीं करता आपको? नहीं करता, बस फिर बात खत्म। आप सच नहीं बताएंगे? आहाना के रुख पर नाराजगी के भाव उभर आए थे। उसके सवाल के बदले अक्षय ने उल्टा उसी से सवाल पूछ लिया। पहले आप बताइए कि मैंने कुछ भी किया हो, आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? चिंता हो रही है आपको उसकी? अक्षय का सवाल सुनकर आहाना चौंक गई और आंखें बड़ी बड़ी किए हैरानी से बोली, हमें उनकी चिंता क्यों होगी? फिर इतनी बेचैन क्यों हैं आप? अक्षय ने भौं हुचकाते हुए सवाल किया। आहाना ने तुरंत ही सहजता से जवाब दिया, हमारे परिवार की चिंता है हमें। ओ, ऐसा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको या आपके फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और आपको? आहाना ने उसके चुप होते ही बेचैनी से सवाल किया, जिसे सुनकर अक्षय की आंखें सामान्य से ज्यादा फैल गईं और अल्फाजों में हैरत खुल गई। आपको मेरी फिक्र है? नहीं होनी चाहिए, आहाना ने उल्टा उलझन भरे स्वर में उसी से सवाल कर लिया, जिसे सुनकर अक्षय के रुख पर खुशी मुस्कान बनकर बिखर गई। होनी तो चाहिए, और मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपको फर्क पड़ता है मुझसे। मेरी चिंता करती हैं आप, पर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे कोई भी तकलीफ या परेशानी हो। पर किया क्या है आपने? आहाना ने व्याकुलता से सवाल दोहराया और इस बार अक्षय ने उसे और परेशान ना करते हुए जवाब दे दिया। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस जाकर उसे प्यार से समझाया है, आपका नंबर डिलीट करवाया है और साथ ही धमकी दी है कि अगर दोबारा आपको कॉल या मैसेज करके परेशान किया तो सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। इसलिए अब आप निश्चिंत रहिए, उसकी सारी आशिकी उतर गई, अब वो दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा और अगर कर दिया तो बताइएगा मुझे, अगली बार प्यार नहीं मार से बात समझाऊंगा। अक्षय की बात सुनकर आहाना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने चौंकते हुए सवाल किया, आप लड़ाई भी करते हैं? करता तो नहीं पर जरूरत पड़ने पर कर भी नहीं सकता, ऐसा भी कुछ नहीं। अक्षय का सवाल सुनकर आहाना कुछ पल खामोश रही, फिर सकुचाते हुए बोली, थैंक यू, किस लिए? अक्षय ने तुरंत ही सवाल किया, हमारा पीछा प्रतीक से छुड़वाने के लिए, हम सच में बहुत परेशान थे, फर्ज था मेरा, मंगेतर हैं आप मेरी, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना फर्ज है मेरा। अक्षय ने हौले से मुस्कुराते हुए सहजता से जवाब दिया, फिर पल भर ठहरने के बाद गंभीरता से आगे कहा, आहाना अगर दोबारा कभी ऐसा हो तो बात अपने तक रखकर परेशान मत होती रहिएगा, मुझे या अपने भैया को बता दीजिएगा, लड़के लड़कों को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। जी जानते हैं हम, बहुत बार रॉन्ग नंबर वाले लगातार परेशान करते हैं, पर एक बार भैया से बात करवा दें फिर भूल कर भी दोबारा फोन नहीं करते। आहाना ने जैसे ही बात खत्म की उसके फोन पर एक और कॉल आने लगी, स्क्रीन पर पल्लवी का नाम शो हो रहा था। अक्षय जी, पल्लवी का फोन आ रहा है, शायद लंच के लिए बुला रही होगी, हम बाद में बात करते हैं आपसे। बाय, आप ही लंच कर लीजिए, बाय। इतना कहकर आहाना ने झट से फोन काटा और स्टाफ रूम के अंदर चली गई। उसे देखते ही पल्लवी ने उस पर सवालों की बारिश कर दी। दूसरी तरफ अक्षय चेयर से बैग टिकाकर आंखें मूंदते हुए मुस्कुरा दिया। आज हुई बातों ने कुछ नए एहसासों को जन्म दिया था जो उसकी खुशी का सबब थी।